जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धरी, जय गिरिवर धरी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धरी, जय गिरिवर धरी। जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वन चारी, जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वन चारी, जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावन चारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धरि जय यशोदानन्दन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यमुनतिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनतिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारिष्टोदरक श्रीमद् इस डिवाइन ग्रीष शील वैचरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विभूति संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोदरक श्रीमद् इस डिवाइन ग्रीष शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरिगोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताई गौत प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के पांचवे अध्याय श्लोक क्रमांक दो, एक और दो, नंद महाराज और वसुदेव जी का मिलन इस अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक श्रीशुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृता। श्रीशुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। श्रीशुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। श्रीशुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचे अलंकृतः। माता जी दस्तु आत्मज उत्पन्ने श्रीशुक उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज नंद, तू वास्तव में आत्मजे उनका पुत्र, उत्पन्ने जन्म हुआ, जातः अभिभूत आह्लाद आनंद से महामना, जिनका बड़ा विशाल मन था, आहूय आमंत्रित विप्रान ब्राह्मण वेदज्ञान, जो वैदिक वाङ्मय में परिचित, स्नातः पूर्ण स्नान करके, शुचि ही शुद्ध करके, अलंकृतः अच्छे श्रृंगार और वस्त्र से अलंकृत, वाचयित्वा वाचन करने पर, स्वस्त्ययनम ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण, जातकर्म उस बच्चे का जन्म तिथि, आत्मजस्य अपने ही पुत्र, वही वास्तव में कारयामास करवाया विधिवत वैदिक वाङ्मय के अनुसार, पितृदेवार्चनम देवता और अपने पूर्वजों की पूजा, तथा और भी, तो एक और वास्तव में दूसरा श्लोक भी है, वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्याम आस विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, नंद महाराज बड़े उदार थे और जब श्री कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वो आनंद से अभिभूत हो गए, तत्पश्चात स्नान किया, शुद्ध किया और अलंकार और वस्त्र धारण करने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पारंगत थे, और जब सुयोग्य ब्राह्मणों ने ऐसे शुभ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, तो उन्होंने भगवान के अपने नवजात शिशु के जन्म समारोह का आयोजन किया, जो विधि विधानों के अनुसार था, और उन्होंने देवताओं के और पूर्वजों की पूजा की भी व्यवस्था की। तात्पर्य, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्द के महत्व का विस्तृत वर्णन किया है, चर्चा की है। तू, वो कहते हैं, इस वाक्य को समाप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए नहीं, क्योंकि बिना तू शब्द के भी वो वाक्य पूरा है, इसलिए तू किसी अन्य कारण से प्रयोग किया गया है। भले कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव को जात कर्म का सौभाग्य प्राप्त नहीं मिला, जो जात कर्म अर्थात जन्म का उत्सव, बल्कि ये जन्म का उत्सव नंद महाराज ने मनाया, इसलिए यहां कहा गया है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना। जब नंद महाराज ने वसुदेव जी से भेंट की, वसुदेव ये वर्णन नहीं कर पाए कि आपका पुत्र कृष्ण वास्तव में मेरा पुत्र है, आप उनके पिता हो, लेकिन एक दूसरे भिन्न स्वरूप में, आध्यात्मिक रूप से, कंस के भय से वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के जन्म तिथि और उत्सव को नहीं मना पाए। नंद महाराज इसका पूर्ण लाभ लिए। जात कर्म उस समय होता है जब मां और पुत्र के बीच जो बंधन है उसको काटा जाता है, और तब भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वसुदेव जी के द्वारा नंद महाराज के घर लाए गए, ये कैसे संभव था? तो विश्वनाथ चौकत ठाकुर बताना चाह रहे हैं कि कई कई सूत्रों से कि कृष्ण का जन्म यशोदा नंदन के रूप में भी योग माया के जन्म से पूर्व हुआ, और इसलिए योग माया को भगवान श्री कृष्ण की अनुजा के रूप में वर्णन करना उचित है। इस संदर्भ में भले कई संशय हो कि किस प्रकार उस गर्भ के साथ जो जुड़ाव था उसको काटा जाए, ये कैसे संभव हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, लेकिन ये सभी वास्तव में तथ्य हैं। श्री कृष्ण वराहदेव के स्वरूप में प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी की नासिका से, और इसलिए ब्रह्मा जी को वर्णन किया गया है वराहदेव के पिता। और महत्वपूर्ण है कार्याम आस विधिवत, अपने पुत्र के जन्म के पश्चात आनंद से अभिभूत होकर नंद महाराज ने ये नहीं देखा कि वो बंधन यशोदा माई के साथ वो कटी थी कि नहीं कटी थी, उन्होंने फिर भी बहुत आनंद के साथ इस उत्सव को मनाया। कुछ अधिकारियों के मतानुसार श्री कृष्ण वास्तव में यशोदा नंदन है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बिना किसी भौतिकवादी संशय के और हमारे समझ के हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि नंद महाराज का ये उत्सव जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तिथि के अवसर पर हुआ, ये उचित था। इस उत्सव को सर्वत्र किस नाम से जाना जाता है? नंदोत्सव। जय श्री प्रभुपाद की। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष पर उपस्थित सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का स्वरूप का गुण का लीला का वर्णन दशम स्कंद में विस्तृत रूप से आया है। यम रोम रंद्र परिपूर्ति विधाव दक्षा वाराह जन्मनि बभूव रमिस समुद्र। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में संकेत करते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में प्रकट हुए, वराहदेव के स्वरूप में भी प्रकट हुए। वराहदेव के स्वरूप में उनको ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है, ब्रह्मा जी की नासिका से वो प्रकट हुए। यम रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्षा, लेकिन उनकी शक्ति और उनका स्वरूप इतना विस्तारित था, इतना विशाल था कि अगर संपूर्ण वराहदेव के रूप को देखा जाए, उनका एक एक रोम छिद्र इतना विशालकाय था कि हर रोम छिद्र के अंदर संपूर्ण पृथ्वी का समुद्र का जल अगर समाविष्ट हो जाए तो वो समुद्र का जल उससे छलकता नहीं था। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण समुद्र का सारा जल एक वराहदेव के रोम छिद्र के अंदर समाविष्ट हो जाता था। तो सोचिए क्या आकार होगा वराहदेव का। जम रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्षा वाराह जन्मनि बभूव रमिस समुद्र। तो इस तरह वराहदेव का ये स्वरूप इतना विशालकाय था कि हम लोग कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना विशाल होगा। तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कृष्ण यशोदा नंदन ये अवतारी हैं, वराहदेव के भी मूल हैं। तो अगर वराहदेव कृष्ण से प्रकट हुए और कृष्ण का स्वरूप वराहदेव का स्वरूप इतना विशाल है, तो किसी को लगेगा कि उनके जो स्रोत हैं कृष्ण उनका स्वरूप तो उनसे कहीं गुना और अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं यही तो भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा, जब वो यशोदा नंदन के स्वरूप में प्रकट होते हैं, वो यशोदा नंदन जो कि वराहदेव के भी स्रोत हैं, और वराहदेव के रोमकूप में तो सारा समुद्र अंदर जाकर बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन कृष्ण यशोदा नंदन के रूप में जब गोकुल में खड़े रहते हैं, उनका स्नान कराने के लिए यशोदा माई केवल एक बाल्टी जल लेकर स्नान करा देती है। पानीर द्वयंतम स्नपयाम बभुआ, तो बिल्वा मंगल ठाकुर पूछते हैं क्या दोनों एक ही हैं क्या भगवान? दोनों के आकार में इतनी भिन्नता, एक इतने विशाल एक इतने नन्हे, लेकिन फिर कहते हैं कि कृष्ण ही उनके स्रोत हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। श्री कृष्ण की दिव्यता को कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसलिए जन्म कर्मच में दिव्यम कहा गया है। इसलिए यहां पर श्री कृष्ण का जन्म होने के पश्चात उनको लेके आए वसुदेव जी, और वसुदेव जी लाकर उनको यहां पर छोड़ दिए यशोदा माई के पास, और यहां पर मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव, जिसको कहते हैं नंदोत्सव। अब प्रश्न उठता है कि तपस्या तो वसुदेव और देवकी ने की, प्रिष्णी और सुतपा के रूप में, सब लोग थोड़ा इधर आ जाइए भाई, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, बीच बीच में बहुत खाली जगह आ जाइए। अब प्रिष्णी और सुतपा के स्वरूप में उन्होंने इतना तपस्या की, तो इतनी तपस्या करने के बाद लोगों को लगेगा कि भाई छह पुत्रों के, छह संतानों के मृत्यु के पश्चात कंस ने निर्मम रूप से छह पुत्रों की हत्या की, छह संतानों के समाप्ति के पश्चात वसुदेव और देवकी को कृष्ण प्रकट हुए, तो कम से कम इतना तो बनता है कि कृष्ण एकाध लीला करके निकले, इतना तो मिनिमम करना ही चाहिए। लेकिन प्रकट होने के तुरंत पश्चात कृष्ण कहते लेके चलो, हम यहां पर और लीला नहीं करेंगे, सारी लीला ब्रज में करेंगे, गोकुल में करेंगे, किसके साथ? नंद और यशोदा के साथ। तपस्या किसने की? वसुदेव और देवकी ने। मलय किसने पाया? यशोदा और नंद महाराज ने। अब सोचो कि अगर आप बोलो कि भाई, अगर हम आपको प्रचार करते हुए बोलते हैं कि 16 माला हर रोज पूरे जीवन भर आप करना, 16 माला जीवन भर आप करो लेकिन भगवत धाम ये जाएगा, ये स्वीकार होगा? आप बोलोगे यार इतना भी मत करो, इतनी तपस्या की उसका तो कुछ परिणाम मिले, कुछ तो फल मिले। तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, नंदस तू आत्मज उत्पन्ने, अर्थात श्री कृष्ण भक्त के भाव के साथ कैसे आदान प्रदान करेंगे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई इसके विषय में बता नहीं सकता क्या होगा। अर्थात भगवान अपने भक्तों को निरंतर प्रेम के पाश में, बंधन में रखने के लिए अनिश्चितता के सागर में डुबा के रखते हैं। तो यहां पर नंद महाराज और वसुदेव के पास दोनों पहुंच गए, अब कृष्ण भगवान वहां आ गए, नंद और यशोदा माई उनके जन्म के उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? गोपा परस्परम हृष्टाः दधिक्षीराः घृतांबुभि आसिंचन्तो बलिम्पन्तो नवनीतश्च चिक्षिपु। ब्रज में सबसे बड़ा धन क्या है? गोधन, दूध, दही, नवनीत, घी, ये प्रचुर मात्रा में है, इसकी नदियां बह रही हैं। तो हर एक ग्वालबाल के घर पर प्रचुर मात्रा में ये गोधन है। तो जब आनंद मनाना चाहते हैं तो जो अपने पास धन होगा उसी को तो लेके मनाएंगे। तो इसलिए गोपाह परस्परम हृष्टाह, इतने आनंद में है कि श्री कृष्ण का यहां जन्म हुआ, वो अपने घर का सारा गोधन एकत्रित करके लेके आते हैं, दधि, दही, क्षीरा, खीर, घृत, घी, और उसमें थोड़ा जल मिलाकर वो एक दूसरे के ऊपर दूध, दही, खीर, मक्खन, और मक्खन को लेके एक दूसरे के गाल पर मल रहे हैं। आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतश्च चिक्षिपु। मक्खन एक दूसरे के गाल पर मला जा रहा है, ये उनकी होली है। दूध, दही, मक्खन इत्यादि के साथ। तो इस वर्णन को सुनकर कलयुग में सामान्य व्यक्ति का तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि यहां पर दूध का एक लीटर जो वास्तविक हो दिखना ही कठिन है, और यहां पर कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर सिंचन किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतश्च चिक्षिपु। लेकिन ये सब श्री कृष्ण का ही धन है और बहुत प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा में ही समर्पित किया जा रहा है, और भक्त लोग, ब्रजवासी सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत प्रेम से। और आचार्यगण बताते हैं कि ये नवनीत के अंदर भी विभिन्न प्रकार के रंग मिलाकर उसे रंगीन करके सब रंगों के नवनीत को एक दूसरे को लगाया जा रहा है प्रेम से। तो मूल भाव क्या है? प्रेम का। तो राधानाथ महाराज ने भी 2005 या 6 में, मुझे याद है, हम लोगों से कहा हम लोग होली खेलेंगे मंदिर में। तो हमने कहा अरे होली तो बड़ा खतरनाक होगा। बोले नहीं नहीं, ब्रज में बहुत प्रेम से खेलते हैं होली, तो हम लोग वैसे ही प्रेम से खेलेंगे। पूरी योजना बनाई अपने पीताम्बर पर, और हम जाके रंग वंग लेके आए, और महाराज ने फिर सबको समझाया कैसे करना है, ऐसे ऐसे लगाओ, यूं राधे राधे बोलते हो प्रेम से। और हमको लग रहा था कि भाई पुरानी आदत तो जाने नहीं वाली, चाहे महाराज कितना भी ट्रेनिंग दे दे। तो स्टार्ट तो हुआ राधे राधे करके, उसके बाद भगवान को होली खिलाते खिलाते अचानक जो पिचकारी थी पब्लिक के ऊपर डाल दिए, और जैसे ही वो हुआ भयंकर कुरुक्षेत्र शुरू हो गया, और 3-4 दिन का महाक्लीनिंग लगा उसके बाद। तो महाराज ने कहा कि भाई हम लोग को लगा कि ब्रज के जैसे खेलेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो ब्रज में आसिंचन्तो विलिम्पन्तो, सिंचन करते हैं, लेप लगाते हैं नवनीतश्च चिक्षिपु, नवनीत को लेकर कृष्ण के समर्पण और आनंद के लिए। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता। अब प्रश्न उठता है कि रोहिणी जी को महाभागा वर्णन किया है, अब रोहिणी जी के पति उनके साथ नहीं, फिर महाभागा क्यों? आचार्यगण बताते हैं जब किसी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा का दर्शन का अवसर मिले, वो उसके जीवन के सौभाग्य का सबसे बड़ा अवसर है। रोहिणी ये नहीं देख रही कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में हमारे पति यहां हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हमारे परम पिता और आराध्य श्री कृष्ण यहां आ गए, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने का सौभाग्य इतना विशाल है, इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि उस श्री कृष्ण भक्ति के अवसर के सौभाग्य के सामने हम सभी के जीवन के तात्कालिक तथाकथित दुर्भाग्य रंच मात्र हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं। इसलिए व्यचर दिव्यवृषस्त्र कंठाभरण भूषिता। तो रोहिणी के व्यक्तिगत जीवन में आपातकालीन परिस्थिति चल रही थी, दुर्भाग्य का माहौल उनके जीवन में था, लेकिन कंठाभरण भूषिता उन्होंने विभिन्न प्रकार के सौंदर्यशाली आभूषणों से अपने आप को अलंकृत कर लिया। क्यों? क्योंकि भले हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई विषाद का विषय हो, लेकिन श्री कृष्ण जन्म लिए ये हर्ष का सबसे बड़ा कारण है, और अगर ये हर्ष का कारण हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है तो अपने सभी तथा कथित निजी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरित विषाद के कारणों को लुप्त कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए। उन सभी बातों को, भावनाओं को, मन में आंदोलित हो रहे इन सब विषाद के सागर से लहरों को समाप्त कर देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का हमारे मन में उदय हुआ, श्री कृष्ण का और उनके वैष्णव भक्तों का हमारे जीवन में उदय हुआ, यह अपने आप में इतना विशाल हर्ष का कारण है कि अन्य सभी विषाद की लहरें क्षणभंगुर हैं, तुच्छ हैं, उपेक्षा पूर्ण है। प्रभुपाद जी एम्स्टरडैम में थे, डीटी इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम था, नए नए भक्त लोग थे। प्रभुपाद ने जैसे संकेत दिया था कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, सब लोग ठीक तरह से समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद ने देखा कि उत्सव में बहुत गड़बड़ चल रहा है, कुछ सामग्री यहां होनी चाहिए वो नहीं थी, कुछ सामग्री वहां होनी चाहिए वो नहीं थी। प्रभुपाद ने पूछा, भाई यज्ञ के लिए फल कहां है, फ्रूट्स कहां है? बोले हम फ्रूट सलाद में डाल दिए। फिर प्रभुपाद ने कहा, ये कहां, ये भी गायब। तो प्रभुपाद चिल्लाने लगे, सारे गेस्ट वहां आए थे, लोकल टेलीविजन चैनल भी आया हुआ था, सब कैमरा में ले रहे थे। और अब होलैंड में, एम्स्टरडैम में, उनको क्या पता कि क्या मंत्र है, तो उनको लगा ये भी शायद कुछ मंत्र ही होगा, उसका सब ले रहे थे शूटिंग। फिर अचानक प्रभुपाद ने जोर जोर से आवाजें सुनी, धम 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 करके आवाज आ रही थी। प्रभुपाद जी को कौतूहल हुआ, ये आवाज कहां से आ रही है? बोले ऑल्टर से आ रही है। प्रभुपाद घबरा के अंदर गए, देखा कि भक्त लोगों ने ऑल्टर जो बनाया था वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, जगन्नाथ का डीटी थोड़ा सा बड़ा था, वो भगवान जगन्नाथ को धक्का मार के अंदर कर रहे थे, अंदर घुसाने के लिए धम धम मार रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, ऑल्टर का साइज बराबर नहीं, काटो ऊपर का पार्ट। अरे भक्त लोग बोले, सबसे सुंदर तो वही है। प्रभुपाद ने कहा, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गलत काम किया, काटो उसको। उसको पूरा काट के फिर उसको लेके बाहर लेके गए। तो फिर टेलीविजन वालों को लगा ये एक और सेरेमनी है। फिर अंदर से क्रोधावेश में आग बबूला होके साक्षात नरसिंहदेव का स्वरूप लेकर प्रभुपाद बाहर निकले, और फिर प्रभुपाद चिल्लाने लगे, विच रास्कल इज रेस्पॉन्सिबल, ये सब गड़बड़ के लिए कौन उत्तरदायित्व है, किसका उत्तरदायित्व है ये? इतने जोर जोर से चिल्ला के प्रभुपाद वहां बैठे और गर्म होकर देख रहे थे। तब प्रभुपाद के ठीक पीछे एक हिप्पी बैठा हुआ था नया, उसके हाथ में माला थी, वो पीछे से प्रभुपाद को यूं यूं करता है। प्रभुपाद पीछे मुड़े तो हिप्पी बोलता है, डोंट बी एंग्री, चैंट हरे कृष्ण, क्रोध मत कीजिए, जप कीजिए। अब प्रभुपाद भी बड़े नम्रता से वो माला ले लिए। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम हो गया, आरती हो गई, फिर प्रभुपाद ने कहा, मेरे लिए प्रसाद, महाप्रसाद आज का लेके आओ। तब तक सब खत्म हो गया, एक प्लेट कोई सर्वेंट लेके भागा प्रभुपाद के पास, वो भी प्रभुपाद के पहुंचने तक नीचे गिर गया। तो शाम के समय प्रेसिडेंट बहुत घबरा कर प्रभुपाद जी के पास पहुंचे कि आज दिन भर में इतनी गड़बड़ हुई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कहने के लिए जब प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश किया, देखा कि प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, अपने घुटने के ऊपर हाथ दे के यूं 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 मंडरा रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं मस्त होकर, गौर निताय बोलते हुए। बोले यार ये क्या, सुबह तो भयंकर वज्रपात हो रहा था, सबकी धुलाई हो रही थी, अब तो बड़े मस्त बैठे हैं। बोले प्रभुपाद जी हमसे बहुत गलती हो गई, क्षमा करें, आप तो बड़े क्रोध में होंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, अरे सुबह तो बड़े क्रोध में थे। प्रभुपाद ने कहा जो समुद्र होता है बहुत गहरा होता है, समुद्र की गहराइयों में हमेशा समुद्र शांत रहता है, लेकिन समुद्र के सतह पर कुछ लहरें दिखती हैं। उसी प्रकार जो कृष्ण का भक्त होता है वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह तल्लीन होता है, मग्न होता है, स्थिर होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। लेकिन तुम जैसे शिष्यों को कभी कभी चेतावनी देने के लिए ऊपर तूफान दिखाना पड़ता है, तो इसलिए यहां पर रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता, रोहिणी के जीवन में भले कुछ दुर्भाग्य आया हो, लेकिन श्री कृष्ण के आविर्भाव का सौभाग्य वास्तविकता थी, इसलिए वो पूर्ण रूप से आनंद में थी। अच्छा, नंद महाराज आनंद के स्वरूप, श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन उनके गोद में बैठे। अब श्री कृष्ण को जो कि आनंद के स्वरूप हैं और नंद महाराज भी आनंद से अभिभूत हैं, अपने जीवन में कोई आनंद की अनुभूति हो रही होगी तो कोई छोड़ेगा क्या? अगर 56 भोग का फीस्ट लेके कोई खा रहा हो और कोई बोले थोड़ा बीच में एक बर्तन घिसना है आ जाओ, तो कहेगा पहले मैं समाप्त करके आता हूं, आप आगे जाओ हम आते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ के कौन जाएगा, आनंद के अनुभव को छोड़कर कौन जाएगा। हाँ अगर परेशान हो रहे हो, बोर हो रहे हो और बीच में कोई निमंत्रण दे चलो भाई करो, तो फिर लगता है चलो एक अच्छा अवसर मिला। अब नंद महाराज के साथ कृष्ण है, साक्षात वहां पर विद्यमान है, और अचानक नंद महाराज के मन में चिंता उमड़ पड़ी कि कंस के जितने अनुचर हैं यहां पर आ सकते हैं कर वसूल करने के लिए, अगर कंस के गुप्तचर यहां आएंगे श्री कृष्ण के लिए बड़ा खतरा होगा। अभी नाम नहीं हुआ है क्योंकि नामकरण नहीं हुआ, हम केवल प्रवचन में श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन नंद महाराज के लिए तो अभी वो बिना नाम के ही हैं, पुत्र ही हैं, नामकरण शेष है। तो नंद महाराज ने विचार किया, कंस के नालायक गुप्तचर यहां आने के पहले हम ही वहां जाकर कर दे देंगे, कंस भी प्रसन्न हो जाएगा, हमको परेशान नहीं करेगा। ये विचार करके नंद महाराज जाते हैं, कंस का टैक्स भरते हैं। टैक्स भरने के पश्चात समाचार फैल जाता है वसुदेव के पास कि नंद महाराज आए हैं। वसुदेव गुप्त रूप से नंद महाराज के पास जाते हैं। नंद महाराज के पास जाकर जैसे ही वसुदेव खड़े होते हैं, पूजित सुखमासीनम पृष्ट्वा अनामयमाद्रित प्रसक्तधी स्वात्म जयो हो इदम आह विषाम्पते, तो बड़े प्रेम से नंद महाराज की वो उपासना करते हैं, आसन देते हैं। नंद महाराज वसुदेव जी को बैठने के लिए आसन देते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे का शुभ पूछते हैं, समाचार पूछते हैं, पृष्ठवा अनामयम आदृत, एक दूसरे को सम्मान प्रदान करते हैं। अब वसुदेव जी के मन में चिंता है, किसकी चिंता? कृष्ण की चिंता, अपने पुत्र की चिंता, कि भाई मैं जाकर रात्रि को, जन्माष्टमी की रात्रि को ही यमुना नदी पार करके अपने पुत्र को वसुदेव नंद महाराज जी के वहां सौंप के आया, उसके बाद कोई समाचार नहीं। अब वो पुत्र जीवित है, कुछ हो गया, स्वास्थ्य ठीक है, मन में चिंता सता रही है। लेकिन यशोदा माई को उस रात्रि को पुत्री जन्म हुई थी और उस पुत्री को वसुदेव जी लेके आए और पुत्र को छोड़ के आए। अब वसुदेव जी डायरेक्ट पूछ लें कि भाई वो बेटा कैसा है, वो लड़का कैसा है, तो नंद महाराज को लगेगा अरे तुमको कैसे पता, अभी तो किसी को पता ही नहीं, अभी तो हमने केवल गोकुल में उत्सव किया और कोई व्हाट्सएप अपडेट तो होता नहीं और सोशल मीडिया तो है नहीं, किसी को मालूम पड़े कैसे पड़ेगा। तो इसीलिए प्रसक्त धी ही उनके मन में, उनके मन में केवल कृष्ण की चिंता चल रही है, निरंतर पनप रही है। प्रसक्त धी ही स्व आत्मजयो हो, मन में कृष्ण की चिंता चल रही है लेकिन मुख पर वो कृष्ण का वर्णन नहीं ला सकते। जानना चाहते हैं मेरा पुत्र कैसा है लेकिन पूछ नहीं पा रहे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का यह अर्थ नहीं कि हम क्या बोलें, कृष्ण भक्ति का वास्तविक मूल है मन में श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति कितनी हो। और इसलिए वसुदेव जी के मन में श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए भाव निरंतर पनप रहा है। कैसे हम कृष्ण को बचा सकें, कृष्ण को संरक्षण दे सकें, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। वसुदेव जी कॉन्शियस हैं, उनकी चेतना में केवल कृष्ण छाए हुए हैं, मन में केवल कृष्ण 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 ही चल रहा है लेकिन मुख पर कृष्ण का नाम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि नंद महाराज को एक श्लेष मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए, ये कहीं मेरा पुत्र नहीं है क्या, अन्य का पुत्र है क्या। इसलिए प्रसक्त धी ही स्वात्मजयो हो इदम आह विषाम्पते। अब कैसे वो विषय को रखते हैं, कृष्ण के विषय में कैसे पूछते हैं, देखिए। दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदम आह विषाम्पते इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजातत् समपद्यत। अच्छा, पूछना चाहते हैं कि भाई आपके पुत्र कैसे हैं, मतलब मेरा पुत्र कैसे है, लेकिन सर्वप्रथम क्या कहते हैं, दिष्ट्या भ्रात प्रवयस। दिष्ट्या अर्थात भाग्य से, दैव से, भ्राता ओ मेरे भ्राता मेरे भाई, प्रवयस आपकी आयु तो बहुत वृद्ध हो गई थी, आप वयोवृद्ध हो गए थे। दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते, लेकिन लंबी आयु तक भी आपकी प्रजा नहीं हुई, लंबे समय तक आपकी प्रजा नहीं हुई। अप्रजस्यते, क्योंकि प्रजा प्राप्त करना यह भी भाग्य की ही बात है। दिष्ट्या अपने चित्रकेतु महाराज विवाह किए, एक पत्नी से संतान नहीं हुए, फिर दूसरी पत्नी से संतान नहीं हुए, तीसरी पत्नी से संतान नहीं हुए, विवाह करते 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 करोड़ पत्नियों के साथ विवाह कर लिया। इसलिए चित्रकेतु महाराज ओरिजिनल करोड़पति हैं। करोड़ पत्नियों के साथ विवाह करके भी संतान नहीं हुआ, तब जाकर फिर वो हर्ष शोक वगैरह की कथा आती है। तो ये कह रहे हैं दिष्ट्या, तो भाग्य से ही संतान होते हैं। इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य, एक आयु के बाद तो कोई कल्पना भी नहीं करेगा, अपेक्षा भी नहीं करेगा कि संतान होंगी। प्रजा आशाय निवृत्तस्य, तो प्रजा की आशा से तो आप निवृत्त हो गए थे, लेकिन अचानक प्रजा तत् समपद्यत, फिर प्रजा हो गई, कितना सौभाग्य है आपका। तो देखिए इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक वैष्णव पर दुख दुखी और पर सुख सुखी, अब वसुदेव के स्वयं के 6 संतान समाप्त हो चुके, 7वां तो स्थानांतरित हो गया बलराम जी, और 8वें कृष्ण। अब एक संतान जो मिले उनको भी वो पाल पोस कर एक बार भी स्तनपान नहीं करा पाई देवकी जी, और उनको वहां से लेके जाना पड़ा। सामान्य व्यक्ति जिसकी चेतना अहंकार और स्वार्थ के चारों तरफ घूमती है, निरंतर अपने दुख अपने कष्ट अपने कमियों को लेकर चिंतित रहता है, उसी के विषय में विचार करता रहता है, विषाद से भरा हुआ उसका हृदय होता है। तो वसुदेव जी अगर कोई सामान्य व्यक्ति होते तो यही सोचते, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 6 पुत्र चले गए, ये हुआ वो हुआ, विवाह के दिन ही अत्याचार हो गया, एक दिन भी मैं सुख का अपनी पत्नी को नहीं दे पाया, और संतान हुआ वो भी गायब हो गया, हाय धिक्कार है धिक्कार है। और व्यक्ति इतना उदास रहता है कि वो अपने चारों तरफ हर परिस्थिति से उदासीन हो जाता है, और किसी को मिलता है तो सबसे पहले अपने हृदय के कड़वाहट को ही उगलता है, जो हृदय के अंदर कड़वाहट भरा हो वही उगल पाता है, क्योंकि जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। ग्लास के अंदर करेले का जूस हो और उसको पियो तो आमरस का थोड़ी स्वाद आएगा। तो जो अंदर रस होगा अगर कड़वा होगा तो जिह्वा पर कड़वाहट आएगी, अंदर मिठास होगा तब तो जिह्वा पर मिठास आएगी। तो इसलिए यहां पर वसुदेव जी के जीवन में इतना कुछ अत्याचार हुआ, इतनी विपत्तियां आई कि कोई अपेक्षा करेगा कि वसुदेव का हृदय तो कितना कड़वाहट से भरा होगा, क्या क्या हो गया मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हो गया, इतना अन्याय क्यों। लेकिन वसुदेव जी अपनी दुर्गति और अपनी विपत्ति के विषय में ना सोचते हुए नंद महाराज के संतान प्राप्ति के सुख का उत्सव मना रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं कि बताइए आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये प्रजा उत्पन्न हुई। प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजा तत् समपद्यत। अच्छा, ये जो इस श्लोक में शब्द का प्रयोग क्या हुआ है, प्रजा, 3 बार प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है। दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजातत् समपद्यत। अब नंद महाराज ने किसका जन्मोत्सव मनाया है, कृष्ण का। वो पुत्र है कि पुत्री, पुत्र है। तो वसुदेव जी पूछ सकते थे, अरे आप इतने समय के पश्चात आपके घर में पुत्र हुआ, पुत्र की कामना से तो आप मुक्त हो गए, रिक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी पुत्र हुआ, कितना सौभाग्य है आपका पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र 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 नहीं बोला, प्रजा 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 बोला। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि यशोदा माई को पुत्री हुई, हालांकि जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि पुत्र भी हुआ, कृष्ण भी प्रकट हुए थे, वो भागवत में डायरेक्ट उसका वर्णन नहीं आ रहा, लेकिन उसका आचार्यों ने वर्णन किया है। तो भागवत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यशोदा माई को पुत्री हुई, और अगर वसुदेव जी बोलते हैं नंद महाराज को आपका पुत्र कैसा है, तो ये क्या होगा? असत्य, अर्धसत्य। तो वास्तव में वसुदेव जी ने ही पुत्र वहां रखा और पुत्री को उठाया, तो इसलिए वो ये नहीं कहना चाहते कि आपका पुत्र कैसा है, वो कह रहे हैं आपकी प्रजा कैसी है। तो प्रजा में क्या है? पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण वसुदेव जी एक शिष्टाचार अपनाना चाह रहे हैं कि किसी वैष्णव के साथ आदान प्रदान हो तो एक रंच मात्र भी असत्य का उसमें दुर्गंध नहीं होना चाहिए। वैष्णव के साथ आदान प्रदान पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कपट की दुर्गंध बिंदु मात्र भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो पुत्र नहीं कह रहे हैं, प्रजा प्रजा प्रजा। इसलिए अपने सभी आचार्यगण इस भाव को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, अगर भक्ति करना हो तो निष्कपट भाव से। शेषलीलार सूत्रगण करी किच्छु विवरण, इहा विस्तारिते चित्त होए। ठाके जदि आयु शेष विस्तरिबा लीला शेष, यदि महाप्रभुर कृपा होए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अरे मध्य लीला के आरंभ में मैं अंत लीला का सब वर्णन कर रहा हूं, लोग पूछेंगे ये क्यों, तो कहते भाई मैं निष्कपट रूप से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के पास एक ऐसी संपत्ति है जो मेरे पास नहीं, वो क्या? समय। मेरी आयु 90-95 की हो गई है, आज कुछ श्लोक लिखकर सो जाऊंगा, कल उठूंगा कि नहीं भरोसा नहीं, इसलिए मुझे इस बात का भय है कि अगर चैतन्य चरितामृत लिख डाला और उसमें महाप्रभु के अंत लीला जगन्नाथपुरी की लीलाओं का वर्णन नहीं आया और मेरी मृत्यु हो गई, तो इतिहास के पन्नों में कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के उन जगन्नाथपुरी के संन्यास के पश्चात की लीलाओं से समाज वंचित हो जाएगा। इसलिए वैष्णव समाज को मैं उन लीलाओं का कम से कम झलक तो देना चाहता हूं। तो बड़े निष्कपट रूप से वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम क्यों उसको लिख रहे हैं। ठाके यदि आयु शेष, आगे आयु मिली, विस्तारी बालीला शेष, विस्तृत रूप से उसको हम वर्णन करेंगे। यदि महाप्रभुर कृपा हुए, यदि महाप्रभु की कृपा हुई तो। हां, इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के आरंभ में ही अंत लीला के श्लोकों के एक एक पंक्तियों को लिखने पर संपूर्ण ग्रंथ के अलंकार में कुछ कमी आ जाती है, सिमेट्री समाप्त हो जाती है। लोग कहेंगे अरे ये क्या, थोड़ा अजीब लग रहा है, आधी लीला हो गई, मध्य लीला आरंभ हुई और अचानक अंत लीला का भी इसमें वर्णन छोटा छोटा सा आ गया, और फिर मध्य लीला कंटिन्यू हो रहा है, और फिर अंत लीला विस्तारित रूप से। तो या तो आदि लीला के स्टार्टिंग में रखो, या फिर हर लीला के हर जो आदि के पहले आदि, मध्य के पहले मध्य, और सिमेट्री नहीं है। बोले यार हमको लोग लेखक माने नहीं माने उससे चिंता नहीं, हम लेखक बनने के लिए नहीं लिख रहे हैं, लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा पहुंचाने के लिए लिख रहे हैं, और इसलिए जो भी हमसे बनता है हम करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा वैष्णव समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण है कि वैष्णवों के बीच जो आदान प्रदान हो वो बिना किसी कपट के होना चाहिए, गुरु शिष्य की तो दूसरी बात। तो प्रभुपाद जी एक अपने शिष्य को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे, अब वो शिष्य के मन में था कि भाई बहुत समस्याग्रस्त पद है, हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद की इच्छा है लेकिन मैं थोड़ा विरोध करूंगा। तो उसने अपना एक पन्ने पे पूरा पॉइंट्स लिख लिया कि कैसे मैं प्रेसिडेंट बनने के योग्य नहीं, और पूरे पन्ने में लिखकर बराबर उसको पॉइंट वाइज सिस्टमैटिक उसने उसको लिख डाला और अपने जेब में रख लिया। फिर किसी ने कहा, प्रभुपाद ने बुलाया, प्रभुपाद के पास गए, प्रणाम किया। प्रभुपाद ने कहा, मैं आपको सेवा देना चाहता हूं। वो तैयार थे कि अभी बोलेंगे प्रेसिडेंट बनो, अपना पॉइंट्स रेडी है, बोल डालूंगा। प्रभुपाद ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम संन्यास ले लो। उसको लगा मैंने ठीक से नहीं सुना, बोला प्रभुपाद जी क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा, मैंने कहा आप संन्यास ले लो। तो उसने कहा, प्रभुपाद जी मेरी तो शादी अभी अभी हुई है, मैं कैसे संन्यास लूं? प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण है ना, देख लेंगे। लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे संन्यास लूं? प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण संपूर्ण जगत को अपना परिवार के रूप में स्वीकार करते, उनके ऊपर आश्रित हो जाओ, संन्यास लो। बोले प्रभुपाद मेरी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, संन्यास लोगे अपने आप शक्ति आ जाएगी, तुरंत संन्यास ले लो। वो घबराकर प्रभुपाद को हाथ जोड़कर कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, संन्यास नहीं ले सकता। प्रभुपाद ने कहा, फिर प्रेसिडेंट बनो। तो कह रहे थे कि भाई जब कोई वैष्णव सेवा दे, वो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा अवसर होता है। इट इज अ प्रिविलेज, नॉट अ बर्डन, भार नहीं है। ये बहुत बड़ा भार नहीं है, वैष्णव के द्वारा सेवा प्राप्त होना भार नहीं, उपहार है, और उस उपहार को स्वीकार करना चाहिए। पाया जार आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णवगन, तारा मध्य मुख्य हरिदास। तो कविराज गोस्वामी भी कहते हैं, हम इतने आयु में भी ये चैतन्य चरितामृत इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भक्त लोगों ने हमें आज्ञा का धन दिया है। पाया जार आज्ञा धन, जो वैष्णव आज्ञा दें वो धन है। लेकिन कई बार हम लोगों को जब आज्ञा मिलती है, हमको लगता है धन नहीं, आज्ञा गन है, बंदूक रख दिया। तो इसलिए यहां पर जो वसुदेव जी और नंद महाराज का श्री कृष्ण को लेकर आदान प्रदान बहुत ही प्रशंसनीय है। अच्छा, अब नंद महाराज कहते हैं कि भाई वसुदेव जी, आपका मेरे प्रति और मेरा आपके प्रति इतना स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते। कई बार होता है, कुछ लोगों के प्रति बड़ा प्रेम होता है, स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण होता है, मिले तो लगता है कि भाई कई जन्मों से हम इनको जानते हैं, और बिना एक दूसरे के साथ एक शब्द बोले ही हम कई घंटे बिता सकते हैं। और दूसरे कई होते हैं, उनको देख के ही लगता है अरे ब्रह्मा ने इनको मेरे लिए बनाया था, लगता है नम्र करने। लेकिन कभी कभी दैववश जिनके प्रति बहुत प्रेम होता है, उनके साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिल पाता, काल शक्ति दोनों को दूर रखती है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, देखो आपका और हमारा इतना प्रेम है लेकिन साथ में नहीं रह पा रहे। तो वसुदेव जी कहते हैं, भाई साथ में रहना, भौतिक सान्निध्य महत्वपूर्ण नहीं, उनकी सेवा चलती रहे वो महत्वपूर्ण है। तो उस सेवा के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो हमें करनी चाहिए। तो इसलिए वसुदेव जी मथुरा में हैं, नंद महाराज गोकुल में हैं, लेकिन दोनों के चिंतन का विषय और चिंता का विषय कृष्ण है। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वसुदेव जी कहते हैं, नैकत्र प्रिय संवास सुहृदां चित्रकर्मणां ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। कहता अरे वेगवती सरिता की लहरें काष्ठ के टुकड़ों को यहां वहां फेंक देती हैं, लेकिन वो काष्ठ के टुकड़े काल के प्रभाव से कभी एकत्रित आकती हैं और फिर बिछुड़ जाती हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न जीव वैष्णव गण वैष्णव समुदाय में रहते हुए भी कभी हो सकता है दो लोग एक साथ कुछ सेवा के लिए आ जाएं और फिर भगवान की इच्छा से दूर हों। लेकिन प्रभुपाद ने कहा अगर आप वहां कृष्ण का नाम ले रहे हो, मैं यहां कृष्ण का नाम ले रहा हूं, हम दोनों कृष्ण की सेवा के प्रार्थना कर रहे हैं तो हम एक साथ हैं मिशन में। तो ये महत्वपूर्ण है समझना। ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोत सोयता, और व्रज का अर्थ ही होता है निरंतर कृष्ण की सेवा का चिंतन। तो अब जैसे प्रभुपाद जी एक शिष्य को वृंदावन में बैठे हुए देखे, प्रभुपाद ने उनको कहा कई दिनों से देख रहा हूं वृंदावन में ही बैठे हो। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी वृंदावन में कितना आनंद आ रहा है। प्रभुपाद ने कहा वृंदावन तुम्हारे आनंद के लिए नहीं है, कृष्ण के आनंद के लिए है। थोड़ा निकलो और प्रचार करो। तो भक्त कहते हैं प्रभुपाद जी मैं तो अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया सब जगह प्रचार कर चुका और कहां मैं प्रचार करूं, ऐसा कौन सा जगह है जहां मैं प्रचार करूं। प्रभुपाद ने कहा श्रीलंका में जाओ। अब वो उसका माथा घूम गया, यार श्रीलंका? वो कहते हैं प्रभुपाद जी श्रीलंका बहुत छोटा देश है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है फिर पाकिस्तान जा। वो सोचता है फिर बोलता है नहीं श्रीलंका ही ठीक है। फिर वो श्रीलंका जाकर प्रचार किए, नास्तिक उनके सामने आए, उनको उन्होंने पराजित किया और प्रभुपाद जी ने उसको अपने बुक में छापा लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो कई परिस्थितियों में हम किसी एक स्थान विशेष में रहना चाहते हैं लेकिन भगवान की इच्छा से जहां भी हमें डाला जाए उनकी सेवा करनी है। अब देखिए वसुदेव जी नंद महाराज को कह रहे हैं आपके पुत्र के ऊपर कुछ खतरों की आशंका मुझे लग रही है क्योंकि कंस जागृत हो चुका है और इसलिए कंस कुछ आक्रमण की तैयारी कर रहा होगा। नंद महाराज आप वापस लौट चलो। नंद महाराज तुरंत वहां से निकल पड़े और उसी समय जो सबसे पहली राक्षसी आई कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने जिसका नाम था पूतना, पूतना स्तनों पर विष धारण करके आई लेकिन सर्वांग सुंदरी सौभाग्यवती लक्ष्मी जी का रूप धारण करके वो चल रही थी। उसे देख के ब्रजवासियों को लगा लक्ष्मी साक्षात आ गई। यहां तक यशोदा माई ने भी पूतना पर इतना विश्वास किया कि श्री कृष्ण को उनके पास सौंप दिया और सोचा कि अगर कृष्ण इनका स्तनपान करेंगे तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। पूतना ने श्री कृष्ण को अपने गोद में रखा, जैसे ही कृष्ण को गोद में रखा कृष्ण ने क्या किया आंखें बंद कर ली। अब आंखें तो हम लोग रोज ही बंद करते हैं और यहां तक कि अभी मैं देख रहा हूं बहुत लोग की बंद भी हैं वर्तमान में भी कथा की समाधि में है। अब आचार्यगण कई कारण बताते हैं कृष्ण ने आंख क्यों बंद की। तो पहला कारण बताते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा ये पूतना साक्षात तमोगुण की प्रतिनिधि है इसलिए तमोगुण को हम नहीं देखेंगे। दूसरा बच्चों की हत्या करके आई है, नन्हे से शिशुओं की हत्यारी का हम दर्शन नहीं करेंगे। फिर कृष्ण ने सोचा इसका स्तनपान करके मैं इसको मुक्त करके माता का स्थान देने वाला हूं। अगर मैंने इसे माता का स्थान दिया, इतना बड़ा पुरस्कार दिया, इतना बड़ा पद दे दिया, जो हत्या करने आया उसको माता का स्थान अगर दे दिया गोलोक में तो हो सकता है कई भविष्य में लोग प्रश्न उठाएंगे, ये कैसा न्याय, हम तो 16 माला जप कर करके थक गए, हमको अभी भी पुनर्जन्म का खतरा है, और ये हत्यारी को माता का स्थान मिल, ये क्या न्याय है, ये क्या है, डिमांड करेंगे लोग, है कि नहीं। बोले कांदा लहसुन भी छोड़ दिया, यहां तक कि चाय कॉफी भी छोड़ दिया, केवल नाम के वास्ते हर्बल टी पीते हैं, जो चाय के नाम पे कलंक है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा ये कि कोई कोई चाय है क्या, झटका ही नहीं लगे तो क्या चाय है। तुम लोग केवल बेचने के लिए, व्यवसाय के लिए क्या क्या नाम से बेचते हैं इसको। अरे मैंने कहा हर्बल टी है ये, हर्बल पानी बोलो, टी मत बोलो। तो इतना सब त्याग करके लोगों को लगता है कि मैंने इतना बड़ा भगवान के लिए समर्पण किया, और फिर प्रीचर बोलता है कोई भरोसा नहीं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरी। अरे जन्मनी जन्मनी के लिए नहीं आए हैं, तो पूतना को मिल गया हमको भी चाहिए। तो भगवान कहते अगर कोई इस तरह आंदोलन करे तो भगवान आंखें बंद करके पूतना के पिछले जन्मों में कोई पुण्य का कोई एक दो बिंदु है क्या देख रहे हैं, कहीं एकाध कुछ ऐसे होता ना प्रसाद के सब खत्म हो जाता लास्ट में एकाध चावल का दाना बचता है, वैसे ही पुण्य तो है ही नहीं, लेकिन कुछ अवशेष एकाध कुछ बचा है क्या ढूंढ रहे हैं आंख बंद करके, जिससे कि अगर लोग बहुत ज्यादा प्रश्न उठाएं वो दिखा देंगे, अरे देख थोड़ा पुण्य किया था उसने। फिर चौथा कारण क्यों आंखें बंद किए, क्योंकि जब कोई बहुत ही कड़वा अपन करेले का जूस या नीम का जूस पीते हैं तो अपने आप आंख बंद हो जाता है, तो विष को स्पर्श करते ही अरे कहां मक्खन खाने आया था, और ये लीला में सबसे पहले क्या पिला रहे हैं। अच्छा फिर और आचार्य बताते हैं आंखें क्यों बंद की, भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया पूतना को, बोले यार मैं तो ब्रज में दूध पीने आया था, ये तो विष पिला रहे हैं। अरे विष तो अपना डिपार्टमेंट नहीं है, विष किसका डिपार्टमेंट है, शिव जी का। तो आंखें बंद करके मैसेज भेज रहे हैं शिव जी को, शिव जी आ जाइए आ जाइए, आपके लिए सेवा रेडी है, विष भक्षण करने के लिए आ जाइए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें यहां वर्णन कर रहे हैं, क्यों विष पीने के पहले आंखें बंद की, उसके बाद पूतना के स्तन को धारण किया और विषपान के साथ साथ पूतना की जान को ही खींच लिया। पूतना अपने उस सुंदर स्वरूप को धारण नहीं कर पाई, अपने वास्तविक विशालकाय स्वरूप में उठ गई, और कृष्ण उनको पकड़ते पकड़ते फिर वो गई, और पूरे विशालकाय जो वहां पर एक वन था उस वन के सभी वृक्षों के ऊपर वो गिर गई, देह त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने उनको मुक्त करके माता का स्थान दे दिया। पदभ्याम भक्त हृदयस्ताभ्याम बंदाभ्याम लोकबंदितैः अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम्। अरे जिन श्री कृष्ण के चरण कमलों को 33 कोटि देवता वंदना करते हैं, वो श्री कृष्ण के सुंदर कोमल चरण कमल और उस चरण कमल का रज पूतना के आसुरी पापी देह का अभिषेक कर रहे थे। तो सोचिए पूतना ने क्या पुण्य किए थे। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासीना, लोग बच्चों को मारी, स्तनपान में उसने जो है राक्षसी रुधिरासना रक्त पीती थी, जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वापि तद्धरौ, और केवल उसने कृष्ण को मारने की इच्छा से वो आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनको माता का स्थान दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के हृदय के भीतर जो करुणा वरुणालय है उसका स्मरण करते हुए कल्पना नहीं कर पा रहे, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, यच्छन प्रियतमं किमनु रक्तस्तन मातरो तथा। कि भाई पूतना विषपान करने आई, माता का स्थान दे दिया, जो गोपियां और गाय गो माता श्री कृष्ण को अपना दूध पिला रही हैं, उनको कौन सा स्थान देंगे? कृष्ण के अपने खजाने में और क्या रह गया पुरस्कार देने के लिए? जो हिंसा के साथ हत्या करने आई, विषपान कराई, उसको माता का स्थान दे दिया। तो जो भक्ति के साथ प्रेम से उनकी सेवा करे, उनके लिए, कृष्ण के लिए क्या बचता है? तो इसलिए ये पूतना जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? कपटी गुरु, जो अपने आप को गुरु बतलाते हैं लेकिन वास्तव में गुरु जैसा कोई उनके अंदर लक्षण नहीं। प्रभुपाद जी के पास किसी ने आके कहा कि हमारे ऐसे गुरु हैं जो ध्यान लगाते हैं तो हवा में उड़ते हैं। प्रभुपाद जी करे, हवा में तो कॉकरोच भी उड़ जाता है। किसी ने कहा प्रभुपाद जी मेरे गुरु ऐसे हैं जो मुझे स्पर्श करते तो मुझे झटका लगता है। प्रभुपाद ने कहा बिजली के सॉकेट में हाथ डालो उससे बड़ा झटका लगे। किसी ने कहा ये हमारे गुरु हैं मौनी बाबा हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा मौनी बाबा है मतलब मैं तो बोल सकता हूं ना? हाँ बोल सकते। तो प्रभुपाद को उनको मौन रखने बोलो, मैं बोलूंगा, मैं उनको समझाऊंगा तत्व ज्ञान क्या है। तो वास्तव में गुरु कौन, इसको समझना आवश्यक है। और पूतना एक दूध पिलाने के भाव में आकर विष पिला रही है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान देने का आडंबर रचाते हुए कोई लोगों की श्रद्धा में अगर ठेस पहुंचाए और कृष्ण के निकट नहीं कृष्ण से दूर लेके चले, ये वास्तव में सबसे बड़ी हिंसा है। तो दशम स्कंद तो बहुत ही विस्तृत है, लंबा है, लेकिन हमारे सबसे बड़े ब्रज के कथाकार हमारे बीच यहां पर पूरी तरह तैयार हैं आप सभी को ब्रज की परिक्रमा कराने। तो विश्वरूप प्रभु जो कि कई कई वर्षों से ब्रज की कथा सुना रहे हैं और ब्रज के ऐसे ऐसे स्थानों में आपको लेके जाएंगे जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यहां पर यह लीला हुई हुई। तो ब्रज के सबसे बड़े हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित इतिहासकार, कथाकार और श्री कृष्ण के इन लीलाओं को हम तक स्पष्ट रूप से पहुँचाने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ विश्वरूप प्रभु का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।